बारा हम तेरे बिन। रौनक अचानक से चहकते हुए बोली, नानीमा प्लीज मुझे भी डांस करने की इजाजत दीजिए ना, इन लोगों को क्या डांस आएगा, इनको तो डांस मैं सिखाती हूँ, और वैसे भी वंशिका तो मेरी जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी। आपने देखा था ना मैंने कितनी अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस किया था और कैसे सब लोगों को यकीन भी आ गया था कि मैं एक लड़का ही हूँ। ये सब कुछ बोलते हुए एक बार फिर रौनक को वो सारी बातें याद आ गईं। उसकी बातें सुनते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन वंशिका तुरंत फॉर्म में आकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ हेलो यार, मुझे कुछ कम मत समझो, मैं भी लड़का बनकर नाच सकती हूँ। तुम देखना मैं कितना धमाकेदार लड़के का बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगी, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा कि मैं लड़का हूँ लड़की, और वैसे भी आज के गेटअप को अपने हिसाब से डिसाइड करूंगी। कुछ देर बाद वंशिका जल्द ही उनके सामने लड़कों के गेटअप में मौजूद थी, और एक पल को तो वाकई कोई उसे पहचान नहीं पाया था। इस बार वंशिका ने नीले रंग का कुर्ता पहना था और थोड़ी सी बड़ी मूछें लगाई थी और पगड़ी डाल ली थी। वो किसी गांव से आए हुए मुंडे जैसी लग रही थी। उसने अपने हाथों पर इस तरह के आर्टिफिशियल बॉडी वाले ग्लव्स पहने थे जिससे ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कि वो वंशिका की ही स्किन हो। उसके नाजुक और दुबले पतले से हाथ उसकी मजबूत ग्लव्स वाले हाथों से ढंग चुके थे और ऐसा लगने लगा था कि वही उसकी बॉडी हो। उसने अपने कुर्ते की बाजू को मोड़ लिया जिसमें उसकी बॉडी बड़ी फूली फूली दिखाई दे रही थी और उसमें एकदम लड़के वाला लुक आ गया था। अब ये देखकर तो सभी लड़कियां एकदम से हक्की बक्की रह गईं, क्योंकि वंशिका ने बिल्कुल लड़के का जैसा गेटअप ले लिया था मानो कि वंशिका नहीं बल्कि कोई और लड़का वहां मौजूद हो। वंशिका को देखकर सभी लड़कियां मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए बोली, हाय ये लड़का तो बड़ा हैंडसम मुंडा बनकर आया है एकदम राजस्थानी स्टाइल में। आस्था की ओर देखकर रौनक ने आंखें मारी और शरारती अंदाज में बोली, उफ ये तो वाकई बड़ा गबरू जवान सा लग रहा है। तो ये सुनकर वंशिका कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुराई, फिर एकदम से बोली, अब चलो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे भी 10 बजे से पहले पहले हमें अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर लेनी चाहिए। वैसे मैं तो कहती हूँ कि हमें सबसे पहले डांस परफॉर्मेंस करना चाहिए और खूब मौज मस्ती करनी चाहिए। वैसे भी इस कमरे में तो हम जितनी मर्जी तेज आवाज में डांस कर सकते हैं, डीजे बजा सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं, और कोई हमें रोक टोक नहीं कर पाएगा। अब ये बोलते हुए वो पूरी तरह से उछलने लगी थी। तब ये देखकर सभी लड़कियां ठहाके लगाकर हंस पड़ीं। अब देर ना करते हुए नानीमा अपनी ढोलकी लेकर बैठ गईं और रश्मि ने म्यूजिक ऑन कर दिया था। हाथ के इशारे से नानीमा ने रश्मि को ज्यादा उछलने कूदने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अभी प्रेगनेंसी 3रे ही महीने में थी, तो इसीलिए उसका ज्यादा किसी भी तरह से उछलना कूदना ठीक नहीं था। अंश को गोद में लेकर उसके कानों में छोटी छोटी रुई डालकर नानी माँ ने उसे सुला दिया था और फिर सबको समझाया, इससे बच्चों के कानों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम ज्यादा तेज म्यूजिक नहीं बजाएंगे ताकि बच्चे पर कोई बुरा असर हो। ये बोलकर नानी माँ ने जल्द ही अंश को एक तरफ लेटा दिया था और फटाफट से उन्होंने अपनी ढोलकी पर हाथ चलाना शुरू किया। सभी लड़कियां पूरी तरह से झूमने लगी थी और जल्द ही वहां पर बैकग्राउंड में एक से बढ़कर एक पार्टी सॉन्ग्स, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज की रात मजा हुस्न का, खेतों में क्यों नहीं, इस तरह के जो कि फेमस सॉन्ग्स थे वो सब बजने शुरू हो गए। वहीं दूसरी ओर सभी लड़कों पर बेचैनी भरी फीलिंग हावी होने लगी थी। उनके चेहरे पर कन्फ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। दादाजी भी पूरी तरह से हैरान परेशान होकर सिंघानिया मेंशन के बाहर ही यहाँ वहाँ बेचैनी से घूम रहे थे। वहीं सभी लड़के एकदम परेशान होकर सड़कों पर इधर उधर धक्के खा रहे थे। अपने सोर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने सभी जगह पर फोन और मैसेज डाल दिए थे कि उनके घर से लड़कियां गायब हैं। वहीं आकाश की भी रह रहकर हालत खराब हो रही थी। वो सोच रहा था, अगर ऐसी सिचुएशन में रश्मि को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। कहीं ना कहीं उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था और वो मन ही मन यही सोच रहा था कि एक बार रश्मि उसे मिल जाए तो फिर वो उसे अपनी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी कहीं दूर नहीं जाने देगा। इस सोच के उसने हॉस्पिटल में जहां रश्मि काम करती थी और उसके फ्लैट तक जहां भी पॉसिबल था हर जगह रश्मि को तलाशना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे रश्मि कहीं नहीं मिली। और परेशान होकर आकाश ने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तुरंत अविनाश को फोन मिलाया और अपनी भड़ास निकालते हुए चिल्लाया, अविनाश तुमने किस तरह के मुस्टंडों को घर पर सिक्योरिटी के लिए रखा है, एक काम भी ढंग के नहीं कर सकते। मैं कब से उनसे पूछे जा रहा हूँ कि घर की लेडीज कहाँ गायब है, लेकिन उन्हें तो इस बारे कुछ पता ही नहीं है। आकाश की बात सुनते ही अविनाश के माथे पर बल पड़ गए और वो एकदम से भड़का, ऐसे कैसे हो सकता है, जो सिक्योरिटी मैंने वहां लगाई है उसकी सैलरी इतनी ज्यादा हाई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी के साथ करते हैं, मैं अभी घर वापस आ रहा हूँ। वहीं जब वो लोग हर जगह धक्के खाकर वापस से मेंशन आ गए तो इस वक्त उनके चेहरे का रंज एकदम से उड़ा हुआ था। वो सभी मुंह लटकाए हॉल में बैठे हुए थे, घर की औरतों के बिना वो घरों ने काट खाने के लिए दौड़ रहा था। उनकी आंखों में ढेर सारी भावनाएं उमड़ आईं जो आखिर में एक आह बनकर रह गईं। उन सबका पूरा दिमाग इस वक्त बस इसी उधेड़बुन में था कि किस तरह से सब लेडीज को ढूंढा जाए। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। वहीं आहान की बेचैनी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक अजीब सी घबराहट उसके दिल पर हावी होने लगी थी। उसका मुंह रोने जैसा हो गया था और वो दबी हुई आवाज में बोला, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? इतनी जल्दी घर से सभी लड़कियां कहां जा सकती हैं? मेरी प्यारी भाभियों को मैंने आज ही तो गले से लगाया था, आज ही तो उन्होंने मुझसे लाड प्यार जताया था। ये सब अचानक से क्या हो गया? और मेरी बीवी, वो कहाँ गायब हो गई? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? कहीं मेरा बच्चा दुश्मनों के घर पैदा हुआ तो मैं क्या करूंगा? और अगर वो ब्लैक किंग को देखते हुए पला बड़ा तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे को अपने सामने पलते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि वो अरमान भाई के जैसा डेविल ना बने। अब मैं क्या करूँ? उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आहान की बेतुकी बातें उन सबको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। सबका मन तो हुआ कि वो आहान का सर ही फोड़ दे, ताकि वो कुछ देर तक खामोश रहे। तभी सुमित का माथा ठनका और वो जोर से भड़का, अभी आहान चुप हो जा यार, बिहेव मच्योर प्लीज, शांत हो जा, तुझे अब थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, इस तरह बच्चों जैसी शिकायत कब तक करता रहेगा? हालांकि सुमित का लहजा भले ही सख्त था, लेकिन उसमें कोई कड़वाहट नहीं थी। सुमित की बात सुनकर आहान ने नाक से कोरते हुए आंसुओं को रोका और फिर एकदम से चीखा, अरे सुमित भाई, आपको नहीं पता इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। आप नहीं समझते कि मेरी बीवी और बच्चा लापता है। मैं उन दोनों को कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बोलते हुए वो फिर रो दिया, हु हु हु। वहीं दादाजी अब थोड़ा इमोशनल होते हुए नासमझी में बोले, लेकिन बहन जी तो थोड़ी देर पहले हमसे मिली थी। सब बच्चियां हॉल में बैठी हुई गपशप कर रही थी, फिर एकदम से सब एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? कोई एक तो यहाँ आसपास होती ना। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले आखिर हुआ क्या था। सबने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। वहीं दूसरी ओर
कमरे में सभी लड़कियों ने अलग ही तरह की धूम मचाई हुई थी। सभी लड़कियां खूबसूरती से तैयार हुई थीं और सभी एक से बढ़कर एक लग रही थीं। नानी माँ ने उन्हें इस तरह का आउटफिट दिया था जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो सारी नई नवेली दुल्हनियां बनी हों। नानी माँ ने थोड़े से गजरे उनके लिए मंगवा लिए थे। सभी ने हंसी खुशी अपने बालों में गजरे लगवाए, बड़ा सा सिंदूर लगाया था, माथे पर कुमकुम लगाया था, उनकी आंखें काजल से सनी हुई थीं और होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। नानी माँ ने एकदम दुल्हन वाला लुक उन सबको दिया था। फिर नानी माँ ने सब लड़कियों को गौर से देखा। सब लड़कियों ने दुल्हन वाले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन मेकअप काफी हल्का फुल्का सा लगाया था, मानो कि जैसे मेकअप उन्हें खा जाएगा। ये सोचकर अगले ही पल नानी माँ का पारा हाई हो गया और वो उन्हें घूरते हुए जोर से चिल्लाईं, तुम सबको पता है, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तब हम रात को भी मेकअप लगाकर सोया करते थे। अरे बिटिया, यही तो उम्र होती है सजने संवरने की और ये सारे श्रृंगार करने की। अब ये सारी चीजें तुम लोग नहीं करोगी तो क्या मैं बुढ़ापे करूंगी? इतना कहकर नानी माँ चुप हो गई और सबकी ओर अनमने ढंग से देखने लगी। अब जैसे ही नानी माँ ने बातों ही बातों में अपनी जवानी का जिक्र किया, वैसे ही रौनक, आस्था, रश्मि, राधिका, एंजल और वंशिका ने बारी बारी से एक दूसरे की ओर आंखों ही आंखों में शरारती अंदाज से देखा और फिर अचानक उनके दिमाग में एक जबरदस्त खुराफाती आइडिया आया। बिना देरी किए उन्होंने नानी माँ को एकदम से पकड़कर कुर्सी पर बैठाया और अब वंशिका नानी माँ को फाउंडेशन लगा रही थी, रश्मि पाउडर फैला रही थी, राधिका और एंजल मिलकर नानी माँ के बाल सवार रही थी। नानी माँ उन्हें टोकती ही रह गईं, अरे ये क्या कर रही हो तुम सब? ये क्या हरकत है? कोई हमें देखेगा तो क्या सोचेगा? हे, छोड़ो हमें। उनकी बात सुनते ही रौनक शायराना अंदाज में बोली, अरे नानी माँ, अभी तो आप जवान हैं, ये कमबख्त कौन है जिसने कहा कि आप बूढ़ी हो गई हैं? अरे मैं तो ये मानती हूँ कि आप में अभी भी 100 जवानों की शक्ति है। इतना बोलकर रौनक ने नानी माँ को एकदम से आंख मार दी थी। उसके शब्द सुनते ही नानी माँ ने रौनक को डांटने के लिए तुरंत ही मुंह खोला, लेकिन नानी माँ के मुंह खोलते ही आस्था ने फटाफट नानी माँ को लिपस्टिक लगा दी थी। अब नानी माँ को एकदम तरीके से तैयार करने के बाद सभी लड़कियों ने नानी माँ को एक्साइटेड होते हुए देखा और जिस तरह से तैयार होने के बाद नानी माँ दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए हमेशा उनकी बलाइयाँ लेती थीं, अब सबने बिल्कुल उसी तरह से एक एक करके बारी बारी से नानी माँ की बलाइयाँ लेनी शुरू कर दी थीं। वहीं नानी माँ ने सबको नाराज नजरों से घूर कर देखा और अगले ही पल उन्हें मुंह बनाते हुए फटकारा, तुम लोगों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, एक बार हमारे हाथ में हमारी छड़ी तो आने दो जरा, फिर पीट पीट कर तुम सबका भर्ता बंधूंगी। उनकी बात सुनते ही रौनक ने मुंह फुलाते हुए नानी माँ की तरफ देखा और बेपरवाह अंदाज में बोली, अगर आप बिना मेकअप लगाए मेरे साथ बैठोगी तो मैं अब गोद भराई की रस्म नहीं करवाऊंगी। रौनक की धमकी सुनकर नानी माँ का मुंह बन गया। अब नानी माँ को वहां मजबूरन बैठना पड़ा। अगले ही पल वो रौनक को देखते हुए हल्की नाराजगी से बोली, बड़ी बदमाश हो गई हो तुम, अच्छी तरह से समझ गई हो कि अपनी नानी माँ को किस तरह से अपने झांसे में लेना है।
ये बोलते हुए नानी माँ के चेहरे पर मुस्कान और एम्बैरेसमेंट दोनों एक साथ नजर आ रही थी। रौनक ने तुरंत मुस्कुराकर नानी माँ को गले से लगा लिया था और फिर अचानक देखते ही देखते एक बार फिर उन लोगों ने पार्टी सॉन्ग्स के गानों पर धीरे धीरे थिरकना शुरू कर दिया था। इस बात से अनजान कि उनके पतिदेव, जो कि रात के करीब 9 बजे ही वापस सिंघानिया मेंशन आ गए थे और वो इस वक्त उनकी यादों में मजनू बन बैठे थे, क्योंकि अब तक ना तो उनके किसी आदमी को कोई सुराग मिला था, ना ही सिंघानिया मेंशन से किसी भी लेडीज को घर से बाहर जाते हुए देखा गया था। अब उन्होंने सिक्योरिटी फुटेज भी चेक कर ली थी, लेकिन कहीं से उन्हें कोई कुछ सुराग नहीं मिला, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ हॉल में लगा हुआ था और हॉल से भी किसी लड़की को बाहर जाते हुए फुटेज में नहीं देखा गया था। तो सभी लड़कों के दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उसमें अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। वहीं आहान तो एकदम गुमसुम बैठा था और रह रहकर वो यही सोच रहा था कि अगर कहीं उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उसके हवा हवाई के सपनों का क्या होगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो एक बार फिर चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ा। वहीं ध्रुव को भी वंशिका की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वंशिका का भी कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। आकाश का भी यही हाल था, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और अपनी बीवी को वो किसी भी हाल में नहीं खो सकती थी। आखिर वो उसकी बचपन की मोहब्बत थी, उसकी पूरी दुनिया रश्मि में ही बसती थी। सभी अपनी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते थे। वहीं अरमान, जिसका चेहरा इस वक्त एकदम पूरी तरह से इमोशनल था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की शांति छाई हो। इस वक्त अरमान बार बार अपने सर पर हाथ रखकर लगातार अपनी आंखों पर टेंशन में हाथ फेर रहा था। वहीं अब अविनाश जैसे तैसे फास्ट ड्राइविंग करते हुए आनंद फानन में घर आ गया था और घर पहुंचकर अविनाश की नजरें साफ तौर पर ठिठक गईं। उसने उन सब लड़कों को फिक्र और बेचैनी से भरे हुए देखा तो वो पूरी तरह से भड़क उठा। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ है आस्था और बाकी सब लेडीज कहाँ हैं? मुझे मेरी एंजल कहीं दिखाई नहीं दे रही है और बाकी सब लेडीज क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सबके यहाँ होते हुए भी आस्था और बाकी सब लेडीज कहाँ गायब हो सकती हैं, बोली अरमान। मुझे जवाब चाहिए, कहाँ है मेरी बहन? अविनाश की आंखें इस वक्त पूरी तरह से अंगारे बरसा रही थी। वो हर हाल में जानना चाहता था कि आखिर उसकी बहन कहाँ गई है। अविनाश के गहरे शब्दों ने अरमान के चेहरे को सख्त कर दिया और अगले ही पल वो अविनाश को गहरी नजरों से देखने लगा। अविनाश ने तुरंत ही गुस्से से भड़कते हुए सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को यानी चौकीदारों को बुलाया। उसने हर एक गार्ड्स को कमरे के बाहर तैनात कर रखा था। सिक्योरिटी गार्ड सिर झुकाकर अविनाश के सामने आकर खड़े हो गए। अविनाश ने बारी बारी से उन सबको गुस्से भरी आंखों से देखा। इस वक्त अविनाश का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने गुस्से से सभी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों की निगरानी में इस तरह से भला आस्था और बाकी सब घर की औरतें कहाँ गायब हो सकती हैं? बोलो, जवाब दो मुझे। अगर तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया तो अविनाश रघुवंशी अभी और इसी वक्त तुम लोगों का काम तमाम कर देगा। अविनाश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था आहान के दिमाग में और आगे क्या होगा इस कहानी में? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी ये स्टोरी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपका एक शेयर बहुत हेल्पफुल होगा। मैं आप लोगों के लिए डेली एक चैप्टर देने का पूरा ट्राई करूंगी। आई होप आप लोग भी मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, प्लीज दोस्तों। और स्टोरी में आपको आपके सभी लोगों के सवाल के जवाब भी मिलेंगे। बस अपना साथ बनाए रखें।